सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर, धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
ओम शांति। पिछले दो दिनों से आप सुन रहे हैं राजयोग के अभ्यास से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उसी विषय को थोड़ा और विस्तार से हम समझेंगे कि व्यवहारिक जीवन में सामाजिक जीवन में हम कैसे संतुष्टतापूर्ण और प्रसन्नतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। कहते हैं कि यूं तो मनुष्य भी जीते हैं और पशु भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन जीने में अंतर है। मनुष्य बुद्धिवान प्राणी है और वो अपने बुद्धि विवेक से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन पशु अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। वो जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी रचना रचते हैं, उसकी पालना भी करते हैं और चले जाते हैं। अगर मनुष्य भी ऐसा ही जीवन जीकर संसार से चला जाए तो ये मानव जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। आपने ये समझा वर्तमान समय इस काल चक्र के अनुसार पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के पुनः धर्म की स्थापना कर रहे हैं और मनुष्य को धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बना रहे हैं। कहते हैं कि जब हम स्वयं को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, तभी कर्मों से गिरते जाते हैं और परमात्मा को पुनः इस सृष्टि पर आना पड़ता है और वो नर से पुनः नारायण और नारी से पुनः श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करवाते हैं। राजयोग अभ्यास का ये मतलब नहीं है कि जीवन में हमें कोई सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी या हमारे जीवन में कोई चमत्कार होने लगेंगे। जैसे बहुत संत महात्मा या गुरु ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं वो उनके सामने हाजिर हो जाती है। वो किसी को भभूत देते हैं और कहते हैं इनसे आप ठीक हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कभी ऐसा होता भी है, क्योंकि जो गहरी आस्था होती है ये उसका परिणाम होता है, कोई भभूत से ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे कार्य करने से, ऐसे चमत्कार दिखाने से उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की भी प्राप्ति होती है, लेकिन उससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता या उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है, उनके पास एक सन्यासी आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि देखो आपके आश्रम के पास ये जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़े समय के बाद उनका दूध वाला आया और उन्होंने सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा एक पैसे में, उस जमाने में एक पैसा दो पैसा चलते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो जो काम मेरा दूध वाला एक पैसे में कर सकता है वो काम को करने में आपने कितने साल लगा दिए। हाँ, यही अगर आपने सन्यास क्यों किया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए सन्यास किया है, अगर आपने वो सच्ची साधना की होती तो आज ईश्वर को प्राप्त किया होता, उसके समीप पहुंचे होते। तो इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसे चमत्कारों को महत्व नहीं दिया, तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएं, ये राजयोग से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं और ये सबसे बड़ी सिद्धि है। जो भी हमारे जीवन की कमजोरियां हैं वो किसी ना किसी गुण और शक्ति का अभाव है, कहते हैं वो अंधकार के समान है। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है, अगर प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही यदि इन गुणों और शक्तियों का विकास कर दिया जाए तो हमारे विकार कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और वर्तमान समय हम जो घर घर में देखते हैं स्थिति क्या है, कहते हैं नरक के समान है, कलयुग माना नरक के समान है, क्योंकि भले ही आज बहुत साधन सुविधाएं हैं लेकिन घर घर में स्वार्थ है, ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, बदले की भावना है, आप सुन रहे हैं। तो उसने घर घर को नरक समान बना दिया है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि आज घर घर में रामायण और महाभारत चलती है, क्योंकि ये जो हमारे दो शास्त्र हैं ये मनुष्य की दो कमियों पर बने हुए हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, जैसे ही राजा दशरथ ने राम को राज तिलक की घोषणा की तो केकई की दासी मंत्रा उसे ईर्ष्या हुई, क्यों कौशल्या का बेटा राजा बने, रानी केकई जो मेरी रानी है उसने महाराज दशरथ की प्राण रक्षा की है तो उसे अपने बेटे को, क्योंकि महाराज ने उसको दो वर दिए हैं और ये सही समय है कि वो अपने वर ले और भरत को राजा बनाए, उसने यही बात उसको सिखाई और रानी के कई ने दो वर लिए, परिणाम स्वरूप राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी बनी। और यदि हम महाभारत की कहानी देखते हैं तो ये भाई भाई के द्वेष की कहानी है, कौरव और पांडव दोनों भाई थे लेकिन कभी भी उनमें प्रेम नहीं रहा, सदा ही राज्य संपत्ति को लेकर द्वेष रहा और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने, क्या शब्द कहे उसने हम सब जानते हैं, अंधे का बेटा अंधा। और ये शब्द सुनकर दुर्योधन को इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे इसका बदला लेना है, और इसी कारण उन्होंने चालाकी से जुए की योजना बनाई। न सिर्फ जुए की योजना बनाई लेकिन पांडवों को धोखे से हराया और हराने के बाद अपने अपमान का बदला लिया और 13 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास पूरा हुआ, वापस लौटे तो कहा राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। और उसी को लेकर महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश हो गया, ऐसे ही कहेंगे। आज हम ऐसे कितने शब्द बोलते हैं, एक दो तो क्या, सारे दिन में। तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनके अभाव से ये संसार नरक बना हुआ है, और उन शक्तियों का यदि हम विकास कर लेंगे तो वही संसार स्वर्ग बन सकता है। तो हमें विशेष अष्ट शक्तियां, और भी अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं लेकिन विशेष अष्ट शक्तियां जिसमें मुख्य शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य की एक छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर सकता। जैसे हमने कहा कैसे शब्द बोलते हैं हम, किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो हम चार कहेंगे और चार कहा तो 10 कहेंगे, यानी ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना है या जैसे को तैसा मिलना चाहिए, ऐसी हमारी भावना होती है। फिर हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें, अगर हम सहन कर लेंगे तो हमें ही कमजोर समझा जाएगा, हमारी ही गलती समझी जाएगी, तो हमने तो गलत किया ही नहीं है, हम थोड़ी ही कमजोर हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं। क्या होता है परिणाम, कोई भी झुकने को तैयार नहीं तो छोटी छोटी बातें कई बार विनाशकारी हो जाती हैं। ऐसे ही एक गांव की घटना है कि उनको एक भाई को अपनी पत्नी पर शक था और उस बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होता था। अब एक दिन वो घर लेट आई, पहले से ही उसको शक था तो उसी बात को लेकर के फिर झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई दोनों के अंदर कि उसने घर में जो कुल्हाड़ी थी उसको लेकर अपनी पत्नी को मार दिया। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब उसको समझ में आया कि मेरे से क्या हो गया। हाँ, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, परिणाम तो मालूम है। तो उसने अपने लिए फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब देखिए, जो बात सच है या नहीं, जिसका उसे पता भी नहीं है, उस बात को लेकर के एक परिवार तबाह हो गया। ये चरम सीमा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस चरम सीमा तक तो नहीं जाते हैं, फिर भी ऐसे समाचार होते हैं अखबारों में, आए दिन कोई कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं, जब हम सहन नहीं कर सकते तो कहते हैं मनोविज्ञान के अनुसार क्रोध थोड़े समय का पागलपन है। जैसे एक पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है और उसका असर हमारे परिवार पर, समाज पर पड़ता है, संबंधों पर पड़ता है। ज्यादातर गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, हमने जैसा कहा वैसा नहीं किया, या कोई गलती करता है, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हर मनुष्य का व्यक्तित्व, विचार और भावनाएं अलग अलग होती हैं। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है दूसरा भी वैसा ही सोचता है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, गुस्से की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिर ये देखा जाता है जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि इनको आपकी बात माननी चाहिए, मानो आपके परिवार के हैं, आपके ऑफिस में हैं, जहां आप काम करते हैं, वो 10 में से 9 बार आपकी बात मानते ही हैं, कोई एक बार ही ऐसा होता है जब वो समझते हैं वो राइट है और आप गलत हैं। हो भी सकता है हम गलत हों, हम हमेशा ही राइट हों कोई जरूरी नहीं है। तो फिर हमें उनकी बात भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम हमेशा दूसरों की बात मानते हैं? हम सोचते हैं हम इतनी बार इनकी बात मानते हैं, कभी इनको भी तो हमारी बात माननी चाहिए ना? दूसरा हम सोचते हैं अगर काम करवाना है तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, लोग गुस्सा किए बिना काम करते नहीं, घर में गुस्सा किए बिना बच्चे सुनते नहीं, सही है ना? अगर हम गुस्से से काम करवाते हैं तो क्या होता है, काम हो जाता है, क्योंकि जो भी कर्मचारी होते हैं उनको भय होता है कि अगर हमने नहीं सुना तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, तो वो भय के कारण चुप रहते हैं। लेकिन गुस्से में उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, वो कभी भी दिल से काम नहीं करते हैं, मजबूरी से काम करेंगे और इसीलिए आप जैसा काम चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिलेगा। फिर ऐसा भी होता है उनके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना होती है और वो अवसर ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही उनको अवसर मिलता है वो आपके लिए समस्या पैदा करेंगे, तो भविष्य में क्या हुआ, नुकसान हुआ या लाभ हुआ। फिर तीसरी बात, कोई मेरे से गुस्से से काम कराता है तो क्या मुझे पसंद आता है? हमें पसंद आता है कोई हमसे गुस्से से काम कराए? हम सोचते हैं काम तो करना है लेकिन थोड़ा शांति से अच्छे शब्दों में कह सकते थे, क्योंकि हर इंसान सम्मान चाहता है, चाहे वो कोई छोटा है या बड़ा है। ऐसे ही बच्चों को आप गुस्सा करके बोलते हैं तो बच्चे भी भय के मारे चुप हो जाते हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन गुस्से में हम बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं बच्चों को, अच्छे शब्द माना ये नालायक है, ये बेवकूफ है, ये कभी नहीं सुधरेगा, इससे तो ना होता तो अच्छा था, पता नहीं क्या क्या जो उस समय मुंह में आएगा वो हम बोलते हैं। और बच्चे ने किताब उठा ली आपके गुस्से के कारण, अब वो पढ़ नहीं रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी माँ ने क्या कहा या मेरे पिता ने क्या कहा। सही तरीका क्या है, आप बच्चे को समय दें और प्रेम से उसको समझाएं उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे कारण जानना चाहते हैं, और अगर उनको ये समझ में आ गया, वो कन्विंस हो गए आपकी बात से, तो वो जरूर वो करेंगे। लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है, हम इतने व्यस्त हैं आज के समय में तो टाइम नहीं है, और नहीं सुन रहा है तो गुस्सा कर दो काम हो जाएगा। लेकिन वही आपका गुस्सा बच्चे सीख लेते हैं, और जैसे ही बड़े होते हैं आपका सामना करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है अपनी बात मनवानी है तो क्या करना है, गुस्सा करना है। फिर आप सोचते हैं ये आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ सकते, लेकिन सिखाया किसने, हम ही सिखाते हैं उनको। ऐसे ही कोई मेरा अपमान कर देता है, अपशब्द कह देता है, तो भी हम सहन नहीं कर सकते हैं, जैसे कहा तुरंत हम पलट कर जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम सहन करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। मदर टेरेसा एक बार अपने ट्रस्ट के लिए, उनको कुछ सहयोग चाहिए था, तो वो एक बिजनेसमैन के पास गई, और वो बिजनेसमैन को पसंद नहीं था, तो उसने मदर टेरेसा को बहुत भला बुरा कहा, मतलब अच्छी तरह से उनका अपमान किया कि ये पैसा मांगने आई है। उन्होंने चुपचाप सुना, कुछ नहीं कहा, और उसके बाद शांति से कहा कि ये तो आपने मुझे दिया, मेरे पेशेंट्स के लिए आप क्या देंगे। तो ये बात उनको लग गई और उन्होंने उनके ट्रस्ट के लिए चेक बनाकर दिया। तो क्योंकि उसने चुपचाप सुन लिया, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसका परिणाम अच्छा मिला। ऐसे ही महात्मा गांधी के जीवन में हम देखते हैं, ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं, लेकिन एक बार वो एरोप्लेन में जा रहे थे और ब्रिटिश रूल के खिलाफ, क्योंकि वो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस प्लेन में बहुत सारे अंग्रेज बैठे थे, तो क्योंकि उनको पता चला महात्मा गांधी हैं, तो उनके मन में जो उनके प्रति था उस सारा गुस्सा उन्होंने एक पेपर पर लिखकर उतारा और उनको पकड़ा दिया। तो माना उसमें एक पिन थी, वो पिन तो ले लिया उन्होंने और पेपर उनको वापस दे दिया। उन्होंने कहा जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने रख ली, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो जो अपमान हमारा कर रहा है अगर हम दिल पर ना लें, कल भी हमने बात की थी इस बारे में, अपनी मातेश्वरी जी जो ब्रह्मा बाबा के समय में हुए, उनके पास एक बहन आई और उसने कहा, उनको मम्मा कहते थे सब, तो उसने कहा कि मम्मा इसने आज मुझे ऐसा ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा अच्छा इसने ऐसा कहा तो वो बात तुमको लगी कहाँ? तो वो सोचने लगी, उसने कहा मन में लगी ना। तो मम्मा ने पूछा कि वो मन में कहाँ से गई? तो उसने कहा कानों से गई। मन में जाएगी तो कान से सुनेंगे तभी जाती है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि देखो अगर कहीं तूफान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अपनी खिड़कियां बंद करते हैं ना, कि जो तूफान से नुकसान होने वाला है वो मेरे घर में ना हो। तो तुमने अपने कान बंद क्यों नहीं कर लिए जब उसने ऐसा कहा, तो तुमने सुना क्यों? तो ऐसे ही हमें करना है, इसको सहन शक्ति कहते हैं। मानो कोई गुस्सा कर रहा है तो हम एक तरीका और अपना सकते हैं। हम कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि इस समय मैं क्या करूं, तो हम उसको पोस्टपोन कर दें। पोस्टपोन करना माना थोड़े समय के लिए टाल दो कि हम अपनी बात कहेंगे लेकिन 2 मिनट के बाद कहेंगे या 10 मिनट के बाद कहेंगे। कई बार हमें लगता है बहुत धैर्य नहीं है, इतना चुप नहीं रह सकते हम, लेकिन कम से कम 2 मिनट तो चुप रह सकते हैं। उस समय मत बोलिए, तुरंत मत बोलिए। तो 2 बातें होती हैं, एक तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती उनकी नहीं है, हमारी भी गलती है, क्योंकि दिमाग चलता है ना, सोचते रहते हैं, तो समझ में आ जाता है किसकी गलती है। तो अगर समझ में आता है मेरी गलती है तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है, वो परमानेंट पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अगर लगता है इनकी गलती है, इनको बताना ही चाहिए, अगर नहीं बताएंगे तो ये फिर से वही गलती करेंगे, लेकिन तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, और वही बात हम कहेंगे लेकिन शांति से कहेंगे, थोड़ा अच्छे शब्दों में कहेंगे, तो सामने वाला उसे स्वीकार करेगा। जो बात गुस्से में कही जाती है वो गुस्से को ही जन्म देती है। आप किसी पर गुस्सा करेंगे ना, उसकी गलती होगी तो भी नहीं मानेगा, वो सिद्ध करने लग जाएगा। गुस्से से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्याएं बढ़ती ही हैं। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों ही गुस्से वाले स्वभाव के, एक गुस्से वाला हो दूसरा शांत हो तो काम चल जाता है, घर में इतना माहौल खराब नहीं होता, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे और बात बात में घर में झगड़ा होता था तो बहुत अशांति रहती थी। अब वो भाई तो काम पर चले जाते थे और बहन जो है घर में बड़ा दुखी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन जी, मैंने अपने घर में आज कथा रखी है। कई लोग रखते हैं अपने घर में, समय पर त्योहार पर कथा रखते हैं। तो वो कथा सुनने गई और वहां एक पंडित जी, हाँ कोई महात्मा जी आए कथा करने के लिए। तो उसने कथा सुनी तो माहौल में काफी शांति थी, उसे अच्छा लगा। कथा पूरी होने के बाद उसने पंडित जी से पूछा, उसने कहा कि मैं बहुत अशांत रहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे पति भी बहुत गुस्सा करते हैं, आप कुछ उपाय बता सकते हो? तो उसने कहा हाँ हाँ बता सकता हूँ बहन, लेकिन एक शर्त है, मैं जो कहूँगा वो आप करोगी तभी बताऊँगा। तो उसने कहा आप जो कहेंगे मैं करूँगी। तो उसने एक बोतल पानी की मंगाई और उसे दिया, कहा कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रखना। ठीक है, समझ तो गई वो, लेकिन पहले से ही उन्होंने वादा ले लिया था ऐसा करना। तो बॉटल लेकर गई घर में और रोज की बात थी वो, तो कोई बात हुई, पति ने गुस्सा करना शुरू किया तो उसने अपने वादे के अनुसार पानी मुंह में रखा। पानी मुंह में रखा तो गुस्सा नहीं कर सकती थी क्योंकि मुंह में पानी था, तो चुप थी वो। तो पति ने सोचा कि ये तो रोज बोलती है बराबर, आज इसको क्या हो गया, आज तो शांत है, शांत कैसे हो गई? तो थोड़ा और जोर जोर से गुस्सा किया क्योंकि उनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये शांत हो गई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुंह में पानी था। अब फिर दूसरी बार ऐसा हुआ तो भी ऐसे ही किया उसने, तीसरी बार हुआ तो भी बिल्कुल शांत थी वो। तो उनको आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा ये सचमुच बदल गई है, तो ट्राई किया बीच में कि ये गुस्सा करती है कि नहीं करती है, तो देखा नहीं करती है। तो फिर उन्होंने सोचा मैं शायद ज्यादा गुस्सा करता हूँ छोटी छोटी बात में, मुझे भी ध्यान देना चाहिए और अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसे सोच के उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। तो घर में शांति हो गई थोड़े दिन में। अब ये बहन इतनी खुश हुई, वो गई वो पंडित जी के पास, कहा पंडित जी मैं नहीं जानती कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, आपने सचमुच मेरे नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो तो पीने का पानी था, आपको सिखाने के लिए था, और देखो आपने उसका प्रयोग किया तो आपको कितना लाभ हुआ। आप सदा ही ऐसे रहो, जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ तो आपके घर में सदा ही स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहने कहते हैं बहन जी ये कहानी तक तो ठीक है हाँ, लेकिन सचमुच हम जब कोई हम पर गुस्सा करे तो हम चुप नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते, रह सकते नहीं रह सकते, क्या कहेंगे आप सभी, क्या कहेंगे, शांत रह सकते हैं नहीं रह सकते, किसी के गुस्से को सहन कर सकते हैं नहीं, जो समझते हैं हम कर सकते हैं वो हाथ उठाएं, देखिए, और जो नहीं कर सकते हैं वो तो हाथ उठाएंगे नहीं हाँ। तो दिखाई तो दे रहा है, तो जिन्होंने भी हाथ उठाया है हाँ, ये बहुत भगवान के घर में एक हिम्मत का संकल्प आपने लिया है तो उनके लिए आप सभी ताली बजाएंगे हाँ। इतने भी भाई बहने परिवर्तन करके जाएंगे तो ये शिविर की सफलता है, ऐसे ही कहेंगे। तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बताया ना आत्मा अपने मन की अधिकारी है, मन की मालिक है, हम मन को जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं, जो रिस्पॉन्स हम करना चाहते हैं किसी परिस्थिति में हम कर सकते हैं। मैं चाहूं तो शांत रहूं, ये मेरी शक्ति है या नहीं है, तो जैसे ही हमारी सहन शक्ति बढ़ती है हम ऐसा कर सकते हैं। आप यहां देखते हैं चित्र में, जब पेड़ फलों से लगता है तो बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, यहां भी बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और सभी आम के पेड़ पर आम लगे हुए हैं, सही कहेंगे, तो फिर पेड़ क्या देता है पत्थर मारने से, क्या देता है, मीठा फल देता है। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है, तो मनुष्य जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं कर सकता। और हम देखते हैं हमारे इतिहास में जितने भी महान पुरुष कहलाए उनके जीवन की यही विशेषता थी। देखो महाराष्ट्र में भी कितने संत हुए हैं आप सभी जानते हैं, और सबके जीवन में कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन क्या वो कष्टों के सामने कभी हारे, या उन्होंने उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उनके साथ हुआ, किया किसी ने, आप सब उनकी कहानी जानते हो, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर थे, संत तुकाराम थे, संत नामदेव थे, कितने ही संत हुए हैं। महात्मा गांधी की बात हम कर रहे थे हाँ, वो महात्मा ऐसे ही नहीं कहलाए, उनके जीवन में भी ऐसे गुण थे। एक बार ऐसे ही वो ट्रेन में सफर कर रहे थे सामान्य दर्जे में हाँ, जिसे थर्ड क्लास कहते थे उस समय, आजकल तो होता नहीं है थर्ड क्लास हाँ, वहां उसमें सफर कर रहे थे और एक युवक हाँ, वो पान खा रहा था और वो उस डब्बे में चढ़ा और उन्हीं के पास आकर के बैठ गया। अब उसे ये नहीं पता था कि ये महात्मा गांधी, महात्मा नहीं कहलाते थे वो उस समय, कि ये गांधी जी हैं। अब हमारे भारत में क्या होता है, जो ऐसी चीज खाते हैं वो कहीं भी थूकते हैं, कोई मतलब आजादी है, विदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ज्यादा फाइन भरना पड़ता है, उसका जेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो कहीं भी दीवारों पर आप थूक सकते हैं। तो उसने थूक दिया, वो गांधी जी बैठे थे, वो थूक उनके पैर पर पड़ी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उस थूक को पहुंच दिया और स्टेशन आया। लोग गांधी जी के स्वागत के लिए मालाएं लेकर के खड़े थे, उनके नारे लगा रहे थे। अब इस युवक ने देखा ये सब दृश्य और अब वो समझ गया, उसने नाम तो सुना था गांधी जी का लेकिन कभी देखा नहीं था, तो उसको समझ में आ गया कि जिसके ऊपर मैंने थूका वो कौन है। हाँ, तो उसे लगा कि ये इतनी बड़ी हस्ती और मैंने थूका और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हाँ तो ये तो सचमुच महान है, जैसा मैं सुनता था ये वैसे ही है। तो फिर उसने नारा लगाया और लोग नारा लगा रहे थे गांधी जी की जय हो, उसने नारा लगाया महात्मा गांधी की जय हो। तो क्यों कहा महात्मा, हाँ अगर वो भी उसके साथ एक साधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार करते, हाँ मानो कोई हमारे ऊपर थूक दे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसको बता देंगे ना थूकने का मतलब क्या होता है। तो अगर उन्होंने भी बता दिया होता हाँ तो वो उनको महात्मा कहता, कभी नहीं कहता। तो सहन शक्ति व्यक्ति को महान बनाती है, इसीलिए सहनशील होना भी कहते हैं, कहते हैं जो चरित्रवान होता है वो सहन कर सकता है। ऐसे ही ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने कहा हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो क्षमा भाव रखा, फिर भी ये नहीं कहा कि तू इन्हें सजा देना, सारी जिंदगी मैंने इनकी सेवा की और मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसी कारण आज विश्व में जितने भी गिरजाघर हैं उसमें ईसा मसीह की पूजा होती है, भगवान का दर्जा है उनको, क्योंकि वो क्षमा दया करुणा मानवता के प्रति प्रेम का भाव सदा ही था। और ऐसे ही लोग समाज में बड़े परिवर्तन ला सके, क्योंकि क्षमा का गुण व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, वो क्षमा ही उनके लिए शिक्षा हो जाती है। अगर आप किसी को ऐसे सिखाएंगे ना तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपने उनकी गलती को क्षमा कर दिया तो फिर अपने आप रियलाइज करेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना बहन जी हम क्यों सहन करें, हाँ सहन करेंगे तो ये हमारा एडवांटेज लेंगे, फायदा लेंगे ना, वो एक बार दो बार तीन बार चार बार हो सकता, हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, चार बार हमें शायद अपने पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी सहन शक्ति उनमें परिवर्तन लाएगी। तो ये है सहन करने की शक्ति जो हमें राजयोग अभ्यास से सहज प्राप्त होती है, क्योंकि मानव के प्रति प्रेम का भाव, हम भगवान जो प्रेम का सागर है उससे योग लगाते हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में सहज आने लगता है। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। हम देखते हैं जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख इनसे हमारा जीवन गुजरता है, लेकिन ये परिस्थितियां हमें विचलित करती हैं, विचलित करती हैं माना निंदा में दुख में असफलता में मनुष्य दुखी और निराश हो जाते हैं, और सफलता में सुख में कई बार अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन हर स्थिति में मन स्थिर रहे ये राजयोग की सिद्धि है। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में कि समुद्र में नदियां बहुत गंदा पानी लेकर के आती हैं, लेकिन वो सारा पानी सागर में समा जाता है और उसकी सतह फिर भी स्वच्छ रहती है। कभी सागर की सतह गंदी दिखाई देती है, क्योंकि जो गंदगी है अगर वो हल्की है तो सागर उसे बाहर फेंक देता है, और भारी है तो वो सागर की सतह में चली जाती है, सागर स्वच्छ रहता है। तो ऐसे ही इस संसार में बहुत अच्छी बुरी बातें हम देखते हैं, लेकिन हमें ग्रहण क्या करना है, जो हमारे लिए उपयोगी है सार्थक है। कबीर दास जी ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए, मतलब जो अनाज साफ करने वाला सूप होता है वो अनाज को रख लेता है, बाकी सारे कचरे को फेंक देता है। ऐसे ही हम भी वो अपने जीवन में धारण करें जो हमारे लिए सार्थक है इस संसार से, बाकी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुने, देखते हुए भी नहीं देखें। और समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे बहुत समीप मित्र हैं, उनको कोई समस्या है, वो हमसे राय लेना चाहते हैं, वो हमको अपनी पूरी बात कहते हैं और हम उनको बताते भी हैं, लेकिन वो हमें कहते हैं ये मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। लेकिन हमारा कोई अपना होता है फिर हम उसको सुनाते हैं, कहते हैं ये इनकी पर्सनल बात है किसी को मत कहना। उसका भी कोई अपना होता है वो उसको सुनाते हैं, कहते हैं इनकी पर्सनल बात है मत कहना। और होता क्या है, जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती रहती है, और कई बार वो बात का रूप ही बदल जाता है, एक से दो, दो से चार, क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाव उसमें डालता है, जो जैसा समझता है वैसा ही उस बात को कहता है। और जब घूम फिर करके वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है तब तक अनर्थ हो जाता है। इसीलिए कई बार बहुत दुख होता है उस इंसान को कि मैंने इन पर इतना विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। तो एक कहावत बनी, घर का भेदी लंका ढाई। कहते हैं कि रावण की हार क्यों हुई, क्योंकि विभीषण ने रावण के सारे राज राम को खोल दिए थे। हमारा देश हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा, उसका कारण भी था कि हमारे राजा के पास, राजाओं के पास ऐसे लोग थे जो उनके राज उन विदेशियों को खोल देते थे, तो उनकी जीत हो जाती थी। एक बार एक राजा के दरबार में एक शिल्पकार तीन मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी लेकर के आया, लेकिन उसके मूल्य में उसने अंतर बताया। तो राजा ने उसको पूछा कि तीनों तो एक जैसी हैं, इनके दाम में अंतर क्यों है। तो उसने कहा, महाराज ये तीन प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो उसने पहली मूर्ति के कान में तार डाला, वो उसके मुख से बाहर आया। उसने कहा, महाराज ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई भी बात सुनता है तुरंत बोल देता है, ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होते, है ना, कोई भी बात को मन में समा नहीं सकते हैं, तो ये आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, आपके दरबार का राज राज नहीं रहेगा, आपको हानि उठानी पड़ेगी। फिर उसने दूसरे के कान में तार डाला, तो वो उसके मुख से बाहर नहीं आया लेकिन दूसरे कान से बाहर आया। तो उसने कहा कि महाराज ये ऐसा व्यक्ति है जो सुनता है कहता नहीं है, लेकिन दोनों कानों के बीच में क्या है, दिमाग, तो इनके दिमाग में हलचल होती है, क्यों कहा, इसका क्या भाव था, ऐसा कहना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए, तो इसीलिए वो उलझन में रहेगा और कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति भी आपके दरबार के लिए उचित नहीं है। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो ना उसके मुंह से बाहर आया ना कान से बाहर आया, वो कहां गया, उसके पेट में। तो उसने कहा ये सबसे उत्तम व्यक्ति है, विश्वास पात्र हो सकता है, कोई भी बात सुनी ना तो वो कहेगा और ना ही उसके मन में कोई हलचल होती है, जैसे कि बात समा गई, हुई ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में होने चाहिए। तो हमारे में भी तीन प्रकार के हैं, हैं कि नहीं, हाँ, कोई बहुत गंभीर होते हैं, किसी ने कोई बात उनको कही कभी भी उनके मुख से बाहर नहीं आएगी, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जब तक वो किसी को सुना नहीं देंगे तब तक खाना हजम नहीं होता, ऐसे कहते हैं पेट में बात नहीं पचती है, क्योंकि ऐसी कहावत बनी हुई है। एक बार ऐसे ही जैसे सास बहू की बात है, सास ने अपने बहू को कुछ कहा तो उस समय तो वो चुप रह गई, कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन जो पड़ोस में दूसरी बहू रहती थी उसको जाकर के, क्योंकि सहेली हैं आपस में, तो जाकर के उसको सारी बात कह दी कि मेरी सास ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मैं कितना सहन करती हूँ, जो भी। अब बातों बातों में वैसे ही होता है, फिर उस बहू ने अपनी सास को बताया। अब ये दोनों सास सहेलियां हैं, तो उसने कभी उसको सुना दिया कि आपकी बहू ऐसे कहती है, आप उसके साथ ऐसा करती हो वैसा करती हो। अब वो घर में आएगी तो क्या सोचेगी, उसको ये बात कहाँ से पता चली, तो समझ में आएगा ना कि मेरी बहू ने जाकर वो बात कही, तो अब परिणाम क्या होगा, संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, क्या कहेंगे। तो कई बार समाने की शक्ति की कमी होने के कारण हमारे संबंधों की मधुरता खत्म हो जाती है, संबंध कटु हो जाते हैं। तो राजयोग अभ्यास से हमारे में समाने की शक्ति आती है, और हम जो बात जहां जिस समय जिस भाव से कहनी है उस भाव से ही कहते हैं, और अगर नहीं कहनी है तो नहीं कहते। तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चाहिए और बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम बहुत दुविधा में होते हैं, तो हमें परखना होता है सही है गलत है उचित है अनुचित है, मुझे करना है नहीं करना है। और जब हम निर्णय लेते हैं तो सही समय पर सही निर्णय लिया तो हम जीवन में सफल होते हैं, और नहीं तो कई बार हमें पश्चाताप करना पड़ता है, काश उस समय ऐसा नहीं किया होता, ऐसा किया होता तो आज परिणाम कुछ और होता। तो आप देख रहे हैं परखने की शक्ति को दिखाया है, एक जौहरी है वो जानता है कि असली और नकली रतन में क्या अंतर है, उस आधार पर वो उसको परखता है। वो जानता है कि नकली आभूषण और असली आभूषण में सोना कितना है और कितने कैरेट का है, तब वो अपने व्यवसाय में सफल होता है, क्योंकि ये विशेष ज्ञान है उसको। तो हम जहां भी हैं जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि हमारा ज्ञान संपूर्ण है तो हमारी परखने की शक्ति अच्छी होती है। मानो एक डॉक्टर है, उसे बीमारी का ज्ञान है तो वो बीमारी को परख सकता है। एक जज है, उसे अपराधों का ज्ञान है तब वो अपराधी को सही निर्णय दे सकता है। इसी तरह से एक किसान है, उसे बीज का ज्ञान है, उसी आधार पर वो अपनी फसल अच्छी प्राप्त कर सकता है। तो हर क्षेत्र में जितना अधिक ज्ञान हमारा होता है उतना परखने की शक्ति होती है, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो बुद्धि स्वच्छ होती है, दिव्य होती है। तो जैसे हम कहते हैं स्वच्छ पानी में तले तक भी हम देख सकते हैं क्या है, तो ऐसे ही स्वच्छ बुद्धि से हम किसी के भाव तक को भी परख सकते हैं, ये किस भाव से हमारे सामने आए हैं और इस अनुसार इनको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। एक बार एक राजा के पास एक बिजनेसमैन ने बहुत सुंदर हीरे भेंट किए, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ये हीरे सच्चे होंगे, तो उसने अपने दरबारियों को कहा कि आपको समझ में आता है ये हीरे सच्चे हैं या झूठे हैं, तो उसने कहा नहीं हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो उसने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो भी हमें ये बता देगा ये हीरे सच्चे हैं या झूठे उसे इनाम मिलेगा। तो बहुत लोग आए लेकिन नहीं समझ सके। एक अंधा फकीर आया, उसने कहा महाराज मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसने कहा तुम कैसे कर सकते हो। उसने कहा कि महाराज मुझे हीरे की परख है, आप मुझे हीरे दो। राजा ने कहा उसको तुमको दिखाई भी नहीं देता है, आप कैसे हीरे अलग करोगे। तो उसने हीरे लिए और वो हीरे को सूर्य के प्रकाश में रखा, फिर एक एक हीरे को वो हथेली पर रखता था और उसने बिल्कुल असली हीरे और नकली हीरे अलग कर दिए। तो राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तो उसने कहा, महाराज मुझे पता है नकली हीरे गरम नहीं होते हैं, नहीं, नकली हीरे सूर्य के प्रकाश में गरम हो जाते हैं, असली हीरे गरम नहीं होते हैं, तो हथेली पर रखकर मुझे पता चल गया कि कौन सा हीरा गरम हुआ, वो नकली है। तो उस ज्ञान ने उसको परखने में मदद किया। और ऐसे ही निर्णय करने की शक्ति, जब हम परख लेते हैं तो सही निर्णय कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारा मन संतुलित होता है, एकाग्र होता है, निष्पक्ष होता है, तब हमारे निर्णय ज्यादा सही होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तराजू का एक चित्र दिखाया है, तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, संतुलित होती है, वो अभ्यास हमें होता है। और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम जो निर्णय लेते हैं, भगवान की याद में जब हम रहते हैं, तो उसकी भी शक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। और इस तरह से राजयोग से हमारी परखने और निर्णय करने की शक्तियां बढ़ जाती हैं। फिर पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। चित्र में आप देख रहे हैं किसी की मृत्यु हो गई, खासकर अगर असमय मृत्यु हो जाती है, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और जवान बेटा है, हाँ, या पति असमय मृत्यु हो गई, ऐसे बहुत लोग इस दुनिया में होते हैं। आज इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इंसान कई बार इतना दुखी हो जाता है कि लगता है उसके साथ उनका जीवन भी चला गया, दिनों तक महीनों तक सामान्य नहीं हो पाते हैं। लेकिन ज्ञान से हमने समझा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। किसकी मृत्यु हुई है? शरीर की मृत्यु है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था, वो हमारे साथ थी। आपने कर्म की गति के विषय में कल समझा है, अब उसका कर्म संबंध हमारे साथ समाप्त हो गया, तो वो दूसरे स्थान पर दूसरे नाम रूप से जाकर अपना पार्ट बजाएगी। और हम इस सत्य को भी जानते हैं, जो चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है, तो क्यों ना उसके भविष्य जीवन के लिए हम शुभ कामना रखें, उसे शांति का दान दे। अगर हम दुखी होते हैं तो वो दुख उस आत्मा तक पहुंचता है, उसे भी दुखी करता है। ऐसे कई भाई बहने हमारे पास आए हैं, पिछले कुछ महीने पहले ही एक कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एक युगल आए थे, तो वो हमसे मिले और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 18 साल का बाइक लेकर के जा रहा था। आजकल तो यूथ हैं तो ज्यादातर बाइक चलाते ही हैं, और उसका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। अब एक ही बेटा था उनका, तो जैसे ही बेटे की मृत्यु हुई तो माँ बाप जैसे टूट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत दुखी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब उसको याद करके माँ रोती ना हो। हाँ, मुझे जब सुना रही थी तभी भी वो रोने लग गई। लेकिन फिर किसी ने उनको बताया, हाँ, कि आप जाइए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, आप जो ज्ञान समझेंगे उससे आपके मन को शक्ति मिलेगी, आप इसे पार कर पाएंगे, ये जो जीवन में आपके परिस्थिति आई है, होने को तो कोई टाल नहीं सकता जो हो गया, लेकिन आगे का जीवन भी हमारा सहज रहे। तो फिर उन्होंने आकर के साप्ताहिक कोर्स किया, ज्ञान समझा, और 6 महीने उनको हो चुके थे जब वो यहाँ आई, यहाँ हेडक्वार्टर में पहुंचे थे। तब उन्होंने बताया कि सचमुच ज्ञान के बाद हम समझ पाए जो उसकी दुर्घटना हुई उसके पीछे क्या राज था। वो आत्मा हमें भगवान के पास लेकर आई। तो ज्ञान हमारे मन के सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल देता है। और वो धैर्य उनके अंदर आ गया, कि वो उस परिस्थिति को पार कर पाए। ऐसे ही एक भाई थे, उनके 7-8 साल का बेटा था, दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो फिर हर दिन उसको याद करके दुखी होते थे। तो कुछ महीने के बाद उन्होंने एक सपना देखा। कई बार वो आत्माएं सपने में दिखाई देती हैं। तो सपना देखा कि उनका बेटा जो है वो फरिश्तों की सभा में है और सभी फरिश्तों के हाथ में एक कैंडल है, मोमबत्ती है, वो जल रही है, लेकिन उनके बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने उसको पूछा कि बेटा आपकी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रोते हैं, आपके आंसू मेरी कैंडल पर गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है। तो उनको समझ में आया, मुझे अब रोना नहीं है, क्योंकि मेरे रोने से मेरे जो बेटा है उसका भविष्य पर असर आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उस बात को समझा और फिर रोना बंद किया। फिर कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी हम रोएंगे नहीं तो लोग समझेंगे हमें इनसे प्यार ही नहीं था, हम रोना नहीं चाहते। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? दिखाने के लिए रोना है? हम अपने कर्तव्य का उस आत्मा के प्रति जो है वो पालन करें, लेकिन जरूरी नहीं है हम रोएं और दुखी हों। फिर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, मानो बिजनेस में घाटा हो गया, कोई ऐसा रोग लग गया जो असाध्य रोग है, कई बार कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है या और भी ऐसी कोई बीमारियां होती हैं, हो जाती हैं, अनहोनी हो गई, कहीं आग लग गई, चोरी हो गई। तो ज्ञान से हम कर्म की गति को समझते हैं कि जो भी परिणाम हमारे सामने आता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। तो फिर हम धैर्य रख पाते हैं, हम समझते हैं ये हमारे ही कोई कर्म है जो हमारे सामने आए हैं, तो हमें आगे के लिए सावधान रहना है ताकि हम कोई ऐसे कर्म न करें। और भविष्य के लिए भी हम परिवर्तन लाते हैं अपने अंदर। और हमें ज्ञान ये भी समझाता है कि हर बात में कल्याण है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है जीवन में तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा भला है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बुरे के साथ साथ भला भी छुपा हुआ होता है, लेकिन हमारी आदत होती है बुरा देखने की कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये हमारी हानि हो गई। एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में उससे सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई और उसने अपने मंत्री को दिखाया, तो मंत्री ने कहा, महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया, उसने कहा, मेरी उंगली कटी है, अच्छा कैसे हुआ है? ये मंत्री मेरा विश्वास पात्र नहीं है। और उसने गुस्से में आकर के उसे जेल में बंद करवा दिया। अब वही राजा को शिकार खेलने का शौक था, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और बहुत दूर निकल जाता है। उस दिन कबीले के लोग, जो कबीले के लोग होते हैं, वो नर बलि के लिए, देवी को नर बलि चढ़ानी थी, तो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। तो ये राजा को पकड़ लेते हैं और जब राजा को सारी बात समझ में आती है तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है, मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो कहते हैं, राजा तो सर्वोत्तम होता है, राजा जैसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो ले जाते हैं उसको मंदिर में। अब वहां पुजारी देखता है, क्योंकि बलि के कुछ नियम होते हैं, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो देखा राजा की तो उंगली कटी हुई है, तो उसने कहा कि ये देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी, इसको छोड़ दो, कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो। राजा छूट जाता है और जब वो राज्य की तरफ लौट रहा होता है तो उसे अपने मंत्री की बात याद आती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसने सोचा, सचमुच अच्छा हुआ, अगर उंगली कटी नहीं होती तो मेरी बलि चढ़ जाती, कोई बचाने वाला भी नहीं था। तो वो जैसे ही पहुंचता है अपने राज्य में, वहां वो अपने मंत्री को जाकर मिलता है और क्षमा मांगता है। कहता है, मंत्री जी मुझे आज आपकी बात समझ में आई, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा, नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ। आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था। तो क्या हुआ, नहीं तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो संपूर्ण था, आप भी बच गए और मैं भी बच गया। तो देखते हैं घटना कैसी थी। दोनों के लिए बहुत बुरी घटना थी, लेकिन दोनों का ही उसमें भला छुपा हुआ था। तो जीवन में कई बार हम उस समय नहीं समझ पाते हैं जब वो घटनाएं घटती हैं, लेकिन बाद में हमें वो बात समझ में आती है। तो जब हम इस राज को जानते हैं तब भी हमारा धैर्य बना रहता है। और दूसरा, राजयोगी ये समझता है कि ईश्वर मेरे साथ है, और जब सर्वशक्तिवान परमात्मा का मुझे साथ है तो हमारा मनोबल ऊंचा होता है, हमारी सामना करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। महाभारत में युद्ध के समय जब अभिमन्यु को धोखे से मार दिया और अर्जुन को पता चला, तो उसने एक प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को जिंदा चिता में जला दूंगा। अब उसी रात को शिविर में सो रहे थे तो श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के सारथी थे, तो वो युद्ध की योजना बना रहे थे अगले दिन। अब ऐसा युद्ध कैसे जीता जाए कि उसका वध हो, नहीं तो फिर अर्जुन चिता ले लेगा। पर देखा उन्होंने कि अर्जुन तो निश्चिंत होकर सो रहा है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। तो उन्होंने उसको उठाया, कहा, अर्जुन तुम इतना निश्चिंत कैसे सो सकते हो, तुमको पता नहीं है कल तुम्हें कौन सा युद्ध करना है। तो अर्जुन ने कहा कि माधव, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं और आप मेरी चिंता कर रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। हाँ, तो जब जैसे बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि पता है माँ बाप समर्थ हैं, संभाल लेंगे। हमें भी पता है भगवान समर्थ है, वो संभाल लेगा। हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं, हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही छठी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सहयोग की शक्ति। हम जानते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं, एक ही पिता की संतान हैं। फिर चाहे किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा विश्व ही एक परिवार है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति की मान्यता है। तो सही अर्थों में हम समझते हैं कि ये वसुधा कुटुंब कैसे है, तो फिर ये चार बच्चों का या छह लोगों का परिवार ही मेरा परिवार है, नहीं, इन्हीं के लिए मेरी सहयोग की भावना है, नहीं, लेकिन विश्व की किसी भी आत्मा को, क्योंकि सभी मेरा परिवार है और उन्हें मेरे सहयोग की जरूरत है और हम कर सकते हैं तो हम अवश्य सहयोग देते हैं। और जहां सहयोग होता है, कहते हैं वहां एक और एक 11 होते हैं। हाँ, वैसे एक और एक 2 होते हैं, लेकिन इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि एक और एक 11 होते हैं, यानी बड़े काम भी सहज संभव हो जाते हैं, या असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही देवताओं और असुरों को ब्रह्मा जी ने बुलाया भोजन के लिए, और उसका कारण था कि असुर हमेशा उनसे शिकायत करते थे कि आप देवताओं के साथ पक्षपात करते हैं। तो वो उनको सिद्ध करना चाहते थे कि देवताओं में ऐसे गुण हैं। तो उन्होंने भोजन के लिए एक शर्त रखी कि आपके हाथ बांध दिए जाएंगे, तो कोई भी अपनी कोहनी नहीं मोड़ सकता, और कोहनी नहीं मोड़ेंगे तो मुंह में कौर कैसे डालेंगे। तो ऐसा ही हुआ, पहले असुरों को बिठाया गया लेकिन वो नहीं खा सके क्योंकि कोहनी नहीं मोड़ सकते थे। तो उठ गए हार कर जब खाना नहीं खा सके, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। फिर देवताओं को बिठाया गया, तो देवताओं ने सोचा कि हम खुद भोजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हाँ हम दूसरे को तो खिला सकते हैं। तो उन्होंने एक ने दूसरे को खिलाया आमने सामने बैठकर, और भोजन भरपेट किया। तो सिद्ध हो गया कि उनमें वो सहयोग का गुण था जिसकी वजह से उन्होंने वो असंभव कार्य भी सहज संभव कर लिया। ऐसे ही आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। तो केवल श्री कृष्ण नहीं लेकिन उनके जो साथी गोप गोपियां थे उन्होंने भी अपनी एक एक उंगली का सहयोग दिया। तो ये किसका यादगार है? परमात्मा के कार्य का यादगार है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं तो वो कोई जादू मंत्र से संसार का परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उसमें बहुत आत्माओं के परिवर्तन के सहयोग की उंगली होती है। कई बार हमें ये संशय आ सकता है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा कलयुग, क्या सचमुच बदल करके सत्ययुग स्वर्ग की दुनिया इस संसार में आ सकती है? आ सकती है, क्योंकि संसार किससे बना है? मनुष्यों से बना है। मनुष्य ही इसे नरक बनाते हैं और वही मनुष्य जब परिवर्तन हो जाएंगे तो यही संसार स्वर्ग बन सकता है। तो परमात्मा ये कार्य करते हैं और उसमें सभी के तन मन धन का सहयोग होता है। जो तन से सहयोग दे सकते हैं तन से सहयोग देते हैं, यानी सेवा करते हैं। जो मन से शुभ भावनाएं रख सकते हैं वो मन से शुभ भावना रखते हैं। कोई समय नहीं दे सकते तो धन से भी सहयोग करते हैं और इस तरह से सर्व के सहयोग से ये संसार सुखमय बन जाता है। फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम अकेले कहीं कुछ कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी हिम्मत रखता है तो भगवान की मदद के पात्र बनते हैं और साथ साथ दूसरों का भी सहयोग मिलता है। एक बार एक जंगल में आग लगी और एक चिड़िया थी, वो तालाब पर जाती थी, पानी भर के वो उसपे डालती थी। तो जब दूसरे जानवरों ने देखा तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा चिड़िया तुम क्या समझती हो, तुम्हारे ये चौंच भर पानी से ये जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा मुझे पता है, चौंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जब हाथियों ने सुना तो उन्होंने कहा इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी बात सोच सकती है, हम तो आग बुझा ही सकते हैं। तो वो तालाब पर जाकर के सूंड में पानी भर के आग पर डालने लगे और थोड़े समय में आग बुझ गई। किसने बुझाई? तो उसकी हिम्मत ने, चिड़िया ने हिम्मत रखी तो हाथियों को भी प्रेरणा मिली। तो हम देखते हैं संसार में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो किसी एक ने शुरू किए। महात्मा गांधी ने संकल्प किया भारत आजाद होना चाहिए, तब उनमें इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन हिम्मत रखी तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ गया और भारत आजाद हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा, जब परमात्मा शिव ने उन्हें अपना माध्यम बनाया, वो बिल्कुल अकेले थे लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो आज ये कार्य, ईश्वरीय कार्य कितना विशाल रूप ले चुका है। और धीरे धीरे सचमुच इस संसार को हम स्वर्णिम युग और सतयुग बना पाएंगे। ये सहयोग की शक्ति का बल है। सातवीं और आठवीं शक्ति जो हमें प्राप्त होती है राजयोग से वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी जीवन में साथ चलती हैं। विस्तार को सार में लाने की शक्ति, आप देख रहे हैं चित्र में कछुआ है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक खोल होता है, बहुत कठोर होता है, और वो उस खोल में सुरक्षित रहता है, यानी वो अपने अंगों को समेटे रहता है और जब उसे खाना होता है चलना होता है वो अपने अंग बाहर निकालता है। तो एक योगी का जीवन भी ऐसा ही होने लगता है कि हम जब कार्य करते हैं अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं, मन बुद्धि को कार्य में लगाते हैं, कुशलता से अपना काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त हो जाता है, हम अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं, सार में ले आते हैं, आत्म स्थिति में स्थित हो सकते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, आत्मिक शांति का, आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। और यहाँ तक कि हम संसार से भी पार होकर के, न्यारे होकर के परम धाम में मन को स्थित कर सकते हैं, परमात्मा से योग लगाते हुए संसार की परिस्थितियों से बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये कला, जब चाहे हम शामिल हो जाएं और जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, ये योगी में आने लगती है। और इस तरह से परिस्थितियों के प्रभाव से हम ऊंचे उठ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एरोप्लेन ऊपर उठता है तो नीचे कितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, कैसी भी बाधाएं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मन जब ऊंची स्थिति में जाता है तब फिर संसार की छोटी छोटी बातों का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है, उससे हम सहज न्यारे हो जाते हैं, कमल फूल समान हमारा जीवन होने लगता है। कि जैसे कीचड़ में कमल होता है लेकिन कमल से कीचड़ से ऊपर उठता है, ऐसे ही आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। इस जगत के सत्य को हम जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसीलिए कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, या राम गयो रावण गयो जाकू बहु परिवार, सभी को जाना है। लेकिन जीवन भर हम इस सत्य को भूले रहते हैं, हम क्या सोचते हैं, जीवन सदा ही है, और इसीलिए मोह माया में, विषय विकारों में पूरी तरह से जीवन उलझा रहता है। और इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सोचते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मतलब स्वार्थी, आपका कैसे मेरा हो जाए उस प्रयास में लगे रहते हैं, इसीलिए आज संसार में इतना शोषण है। दूसरी तरह के होते हैं जो सोचते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, हाँ मुझे आपका नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है वो हम आपको नहीं देंगे, उस पर तो मेरा ही अधिकार है। तो ये सहज मानव स्वभाव है। लेकिन जो तीसरे होते हैं वो क्या सोचते हैं, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, हाँ न आप कुछ लेकर आए न हम कुछ लेकर आए, जो कुछ मिला है इस संसार में मिला है और यहाँ ही छोड़कर हम जाने वाले, साथ में कुछ ले जाने वाले हैं, नहीं ले जाने वाले। तो उसे हम कहेंगे आध्यात्मिक वृत्ति। जो आध्यात्मिक होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं, जो कहते हैं मनुष्य के तीन मित्र, एक बार एक व्यक्ति के तीन मित्र थे, उसमें एक उसके साथ रहता था सदा ही, साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ साथ में। दूसरा मित्र था वो शहर में दूसरी जगह रहता था, इसीलिए कुछ दिनों में उससे मिलना होता था। और जो तीसरा था वो दूसरे शहर में रहता था तो कभी महीनों में साल में मिलते थे, लेकिन दोस्त थे। अब ये जो व्यक्ति है ये कई एक बार गलत मुकदमे में फंस जाता है, गलत मुकदमा माना उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा देते हैं जबकि हत्या उसने की नहीं होती, लेकिन सारे गवाह से सिद्ध हो जाता है कि इसने हत्या की और इसीलिए उसको उम्र कैद हो जाती है। तो वो जज को अपील करता है, मैंने तो हत्या नहीं की है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है। तो जज कहता है तुम्हारे पक्ष में अगर कोई गवाही देगा तो तुम्हारी सजा बदल सकती है, नहीं तो सारे गवाह जो हैं वो तुम्हारे विरोध में हैं, इसीलिए सजा होगी। तो वो सोचता है मेरे दोस्त हैं वो मेरी गवाही देंगे, तो वो अपने सबसे पहले दोस्त से पूछता है, दोस्त तुम मेरी गवाही दो, मेरे को उम्र कैद की सजा हुई है। तो उसने कहा मुझे कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसने उसको समझाया अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो मेरे जीवन का प्रश्न है। उसने कहा मैं कोर्ट में नहीं आ सकता, सीधा ही उसने मना कर दिया। तो बहुत निराश हुआ कि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसी ने मना कर दिया।
फिर उसने दूसरे दोस्त को पूछा तो उसने कहा दोस्त मैं तुम्हारे साथ अदालत तक आ जाऊंगा लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर के गवाही देना ना मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसने समझाया उसको गवाही नहीं दोगे तो मेरी सजा कैसे बदलेगी, वो भी नहीं माना। अब तीसरे से तो उसे उम्मीद ही नहीं थी हाँ, क्योंकि वो तो कभी कभी मिलता था, पर उसने सोचा पूछ लेते हैं। अब उसने उसको पूछा तो उसने कहा दोस्त मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी गवाही जरूर दूंगा हाँ। तो ऐसे ही आत्मा के तीन दोस्त हैं। पहला दोस्त कौन सा है? पहला दोस्त शरीर है, दिन और रात जीवन भर शरीर आत्मा का साथ है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबसे पहले शरीर ही छूट जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं हाँ, अपने जीवन में शरीर के लिए करते हैं, उसकी प्रवृत्ति में कितना समय देते हैं, शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए हाँ, सारी जो प्रवृत्ति चलती है वो शरीर के लिए चलती है, लेकिन शरीर तो साथ नहीं जाता है। फिर उसके बाद हम जिनको मेरा समझते हैं वो हैं हमारे संबंधी, ये मेरे हैं, या धन संपत्ति जो हमने मेहनत से जमा की होती है हाँ, ये मेरा है, लेकिन क्या वो हमारे साथ जाते हैं? संबंधी शमशान घाट तक हाँ, अदालत तक हमें विदाई देने के लिए आ जाते हैं। उसके आगे की यात्रा तो आत्मा को खुद ही करनी है। और भगवान के दरबार में जो तीसरा दोस्त है हाँ, वो कौन सा है? हमारे कर्म, वो हमारी सच्ची गवाही देते हैं। तो फिर जिस पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है हाँ, हमारे कर्मों पर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। एक राजयोगी ये समझता है कि ये पुण्य की पूंजी, अच्छे कर्मों की पूंजी ही मेरी प्रारब्ध है, ये मेरे साथ जाने वाली है जन्म जन्मांतर तक। तो हम सारा समय केवल शरीर की प्रवृत्ति में या संबंधों में या धन कमाने में ही नहीं लगाते, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में भी हम समय देते हैं। और इस तरह से हम और सब बातों से अपने मन को समेट पाते हैं। और राजयोगी जो है वो अविनाशी कमाई अपने साथ लेकर जाता है। तो इस तरह से योग अभ्यास से विकारों को हम जीतते हैं, जीवन में गुणों का विकास होता है, काम विकार पर विजय होती है क्योंकि आत्मिक दृष्टि हो जाती है। आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं होती है, तो हमारी शुद्ध दृष्टि होती है। ऐसे क्रोध पर विजय होती है क्योंकि शांति की शक्ति आ जाती है, धैर्य आता है, क्षमा भाव आता है, प्रेम बढ़ता है, तो हम क्रोध पर विजय पा लेते हैं। लोभ पर विजय होती है क्योंकि हम स्वार्थी नहीं परोपकारी बनते हैं, देने की भावना बढ़ती है और संतोष का गुण आता है। मोह पर जीत होती है क्योंकि हमें पता है सब विनाशी है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं, तो हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं अनासक्त भाव से हम उसे प्रयोग करते हैं। अहंकार समाप्त होता है क्योंकि निमित्त भाव आता है, हमें पता है करण करावनहार परमात्मा है, हम माध्यम है, तो हम नम्रता पूर्वक अपना कार्य करते हैं। इस संसार में जो हमें रोल मिला है वो रोल हमें प्ले करना है। तो विकारों पर विजय होने से स्व परिवर्तन होता है, स्व परिवर्तन से जीवन में सच्ची सुख शांति मिलने लगती है। और साथ साथ भगवान के इस महान कार्य में, परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन जाते हैं। तो ये थी राजयोग अभ्यास से जो हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैं देख रही हूँ आज आपको सबको आबो दर्शन के लिए जाना है हाँ, तो काफी भाई बहने उठ रहे हैं, लेकिन हम दो मिनट जैसे हम रोज योग अभ्यास करते हैं हाँ, कुछ मिनट हम बैठेंगे शांति से योग अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रस्थान करेंगे यहाँ से। ओम शांति। अपने मन को अपने आसपास के व्यक्तियों से, वातावरण से पूरी तरह से न्यारा कर लें
और तैयार करें मन को अंतर यात्रा के लिए। मन को संकल्प दें, मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूं। प्रकृति के मध्य चमकते हुए सितारे के समान मैं प्रकाश पुंज हूं। मैं अमर अविनाशी शक्ति हूं। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। अनेक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में मैंने भिन्न नाम रूप के शरीर धारण किए और अब इस सृष्टि चक्र के अंतिम समय में मेरे पिता परमात्मा शिव ने मुझे पुनः स्वयं का सत्य ज्ञान दिया है और मुझे पुनः अपने घर वापस लौटना है, जो मुक्ति धाम है, शांति धाम है, परम धाम है। देखें अपने मन को, मन बुद्धि के द्वारा मैं परम धाम जा रही हूं, जो इस भौतिक जगत से पार सुनहरी लाल प्रकाश का लोक है, जहां संपूर्ण शांति है। मेरे परम पिता परमात्मा शिव इस धाम में निवास करते हैं। मैं परमात्मा की संतान हूं और स्वभाव में शांत स्वरूप हूं। शिव बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्व के कल्याणकारी हैं। मुझ आत्मा को सद्बुद्धि देने वाले हैं, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा ने दिया है। और अब मुझे तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान है। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। हर कर्म में मेरा साथ निभाने वाले मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं। मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी और अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगी। शिव बाबा का साथ संग मुझे शांति का अनुभव कराने वाला है, एक परम सुख मैं अनुभव कर रही हूँ, बहुत हल्कापन, न्यारापन। मैं अपनी सब चिंताएं भगवान को सौंपती हूँ। और अब आ जाएं पुनः इस भौतिक जगत में, लेकिन अब मेरा मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत है और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं सभी के प्रति शुभ भावना रखते हुए शांति से कार्य करूंगी। ओम शांति शांति शांति।